From the conference center at Temple Square.
Salt Lake City के Temple Square में conference center से हम आपके 178 The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints के semi-annual general conference के priesthood session को ला रहे हैं. इस session के द्वारा हजारों meeting house में भेजा जा रहे. इस session के लिए संगीत प्रोवो missionary training center के priesthood choir द्वारा प्रदान किया जाएगा.
Thomas S. Monson,
Thomas S. Monson, जो गिरजा के प्रेसिडेंट है, वो आज रात के प्रीस्टूड सेशन को कंडक्ट करेगा.
Brethren,
भाइयों, हम आपको चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के 178th सेमी एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रीस्टूड सेशन में स्वागत करते हैं. इस सभा को सैटेलाइट के प्रशासन द्वारा प्रिस्टूड के भाई और पास दुनिया भर में पहुंचाया जा रहा है. इस सेशन के लिए संगीत प्रोवो मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर के प्रिस्टूड क्वायर द्वारा प्रदान किया जाएगा. डगलस ब्रेंचली के निर्देशन में और क्ले क्रिस्टेंसन ओगन में बजाएंगे. हम इस प्रिस्टूड सेशन को शुरू करेंगे क्वायर के गाने के साथ कॉल टू सर्व. प्रार्थना फिर 70 के एल्डर डेविड्स बेक्स्टर द्वारा दी जाएगी.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
हमारे पिता परमेश्वर, हम बहुत आभारी हैं आपके बेटे जो हम यहाँ आए हैं आपके संदेश सुनने के लिए सभी दुनिया में इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रेम जो हम पर है और आपके सिद्धांत के लिए और सुसमाचार के लिए कि हम खुश रह सके हम आपको धन्यवाद देते हैं इस गिरजाघर के लिए और प्रोफेट्स के लिए और अपोसल्स के लिए और वो सभी कार्य जो गिरजाघर करते हैं सभी दुनिया में और हमें सेवा करने के जो मौका मिलती है हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की देन के लिए बलिदान के लिए प्रश्चाताप के लिए और उसके प्रेम के लिए आपके लिए और हमारे लिए हम उनसे भी प्यार करते हैं हम चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने जिस तरह हम सोचते हैं और हम जिस तरह हम रहते हैं हम उसकी तरह रह
सकें
हम धन्यवाद देते हैं आभारी है औरतें जो हैं हमारे पत्नी जो है और जितने हैं उन सब के लिए हम आभारी हैं उनसे हम सीखते हैं और हम आप से चाहते हैं पिता आज कि हम और करेंगे और कार्य करेंगे और सेवा करेंगे और मदद करेंगे आपके बच्चियों के लिए और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम सुने और महसूस करें कि हम उन सभी चीज को करें जो आज हम सुनेंगे हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी आशीष के लिए जो आपने हमें दिया है और देंगे ये सब हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन
The choir will now
sing, Lord, I would follow thee. गाने के बाद में हम कोरम ऑफ द 12 के एल्डर रिचर्ड स्कॉट को सुनेंगे उसके बाद में 70 के एल्डर जे ई जेंसन बोलेंगे और उसके बाद हम 70 के एल्डर जेम्स जे हमुला से सुनेंगे स्क्वायर गाएंगे
My dear brethren, we're gathered.
मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया भर में हम सभी इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर के पवित्र प्रिस्टुड में. हम आशीष हैं कि हम उन चुने हुए हैं जिसे उद्धारकर्ता ने अधिकार दी है कि हम उनके कार्य में हाथ बटाएं. मैं आश्चर्य करता हूं कि हम सभी अरोनिक और मर्सलेसिक प्रिस्टुड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. जब हम ये देखते हैं कि कितने कम लोगों प्रिस्टुड की शक्ति दी गई है हर इस धरती पर, तो हम आधारी होते हैं जैसे प्रिस्टुड शक्ति के लिए जो हमने यीशु मसीह के नाम से कार्य सकते हैं. प्रिस्टुड परमेश्वर का अधिकार है. ये अनंत तक प्रिस्टुड है जो हमें दुनिया दिया गया है. अगर हम सच्चाई और विश्वास पर रहेंगे तो प्रिस्टुड अनंत तक रहेगा. हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? पवित्र और यीशु मसीह पर विश्वास और उसके राह पर चलकर. जब हम को गॉस्पल का ज्ञान मिलती है तब यह प्रिस्टुड की शक्ति और बात जाता है. यीशु मसीह ही हमारा भयमूल उदाहरण है. वह प्यार और दया से कार्य करता है. नम्रता के साथ उसने उदाहरण दी. प्रिस्टुड की आशीष हमें नम्रता से अन्य लोगों की सेवा में करने में मिलता है. यीशु मसीह के उदाहरण पर विश्वास पर चलना. कुछ मिनटों जब जरूरत हो तो हम जाएं कि शक्ति आशीष धीरज द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ मिनटों के लिए ये सोचो कि हम एक शांत कमरे में हैं जहां पवित्र आत्मा की शक्ति आती है. कुछ को साल में एक बार बातचीत होती है और औरों को बुलावा के नहीं हो पाती. क्या तुम ये अनुभव कर सकते हो कि कुछ मिनटों में मैं तुम्हारा प्रिस्टुड इंटरव्यू लूंगा? हमारे साथ का समय अब आप पवित्र अधिकार के बारे में सोचो. मैं ये भी पूछता हूँ कि तुम ये सोचो कि कितने बार ये शक्ति तुम इस्तेमाल करते हो. मैं तुमको सहायता करना चाहता हूँ कि तुम कैसे इस शक्ति से सहायता दूसरे के कर सको. क्या तुम्हारे विचार पवित्र है और तुम्हारे सफाई की जरूरत है? क्या तुम अपने दिमाग में ऊंचे सोचते हो या गंदा पुस्तक या वेबसाइट में जाते हो? या तुम वर्ड ऑफ विजडम की अच्छी तरह से पालन करते हो? क्या तुम अपने आंखों और कानों की सही इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम जाता है तुम्हारे दिमाग और में? अगर तुम विवाहित हो तो क्या तुम अपनी पत्नी के साथ विश्वास के साथ हो? क्या तुम अपनी पत्नी के साथ सच्चा हो और तुम और कोई स्त्री के साथ ऐसा संबंध ना रखो जिससे तुम्हारी पत्नी को ठेस पहुंचे? क्या तुम अपनी पत्नी और बच्चों को सहायता देते हो? क्या तुम घर के कार्य में अपने पत्नी के हाथ बटाते हो? क्या तुम परिवार में स्क्रिप्चर प्रार्थना और फैमिली होम इवनिंग में अगुवाई करते हो या तुम्हारी पत्नी सभी कुछ करते हैं? क्या तुम अपनी पत्नी को बताते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? अगर तुम्हें कोई भी सवाल पसंद ना हो तो तुम्हें अभी सुधार जाना चाहिए। अगर तुम पवित्र ना हो तो अपने बिशप या स्टेक प्रेजेंट से मिलो। तुम्हें सहायता की जरूरत है। तुम्हारा घाव खुद नहीं भर सकता, वह और बुरा हो सकता है। तुम बात करने में कठिनाई हो सकती है अपने प्रिस्टुड लीडर से, लेकिन मैं तुमको अभिलाषा देता हूँ। तुम्हें अभी जानना चाहिए खुद के भलाई के लिए। भाइयों, मैं अब बात करता हूँ कि हम प्रिस्टुड का प्रयोग कैसे करें, खासकर पिता के बताए के लिए। पवित्र आत्मा की वाणी को सुनो। और चौकरना रहने की कैसे तुम और की जिंदगी में प्रिस्टुड की आशीष दे सकते हो? मैं सोचता हूँ काफी, ताकि सभी को आशीष मिल सके। कई आदमी नहीं करते। मैं सभी को अपने पत्नी के साथ हमेशा रहो और प्रभु के काउंसल लो, और अभी भी अपने पत्नी के साथ भाग लो बातचीत में, परमेश्वर के कार्य में लग जाओ और परिवार के लिए। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
How you can make greater use of the power of the priesthood.
Priesthood se den seva aur dusron ki madad karna chahiye, na to dusron ko dukh pahunchana chahiye. Kuch main sochta hu vidwa ke liye jo ek samundra dayalu priesthood shakti ke dwara sahayata pa sakti hai, kai sahayata nahi milega. तुम उसे कई प्रकार की सहायता प्रदान कर सकते हो, जैसे आशा देने की छोटी छोटी मरम्मत करना। एक बिशप अपने रिलीफ सोसाइटी बहनों की सेवा कर सकता है जिनके घर में प्रिस्टुड की शक्ति ना हो। रिलीफ सोसाइटी घर पर जाकर और जानकारी पा सकती है जरूरतों को। अगर ये रिलीफ सोसाइटी से ना हो सकता है तो एल्डर्स कोरम और हाई प्रिस्ट कोरम की सहायता ले सकते हो। जब बिशप तुम पत्नी और पत्नी को समझाते हो तो क्या दोनों क्या एक प्रकार देखते हो? जब मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूं तो मैं देखता हूं कि कई लोग औरतों को उतनी मोल नहीं देते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या अकेली बहनों की बातें सुननी जाती है जब वे गिरजे में आते हैं? क्या उनको गिरजा में बुलावा दिया जाता है ताकि उनको एकता महसूस हो? क्या उनको प्रिस्टुड का सहयोग मिलता है? प्रिस्टुड से देन सेवा और दूसरों की मदद करना चाहिए, ना तो दूसरों को दुख पहुंचाना चाहिए। कुछ देशों में आदमी महसूस करते हैं कि उन्हें ही सब कुछ अकेल करना चाहिए।
To dominate, control and regulate all family affairs.
प्रभु ऐसा नहीं चाहता। कई जगह पत्नियां ऐसा मानना चाहते हैं जैसे कि पत्नी ने उसे खरीदा हो दुनिया की चीजों की तरह। यह गलत है और शैतान का मार्ग है। जैसे हर एक प्रिस्टहुड होल्डर से अलग होना पड़ेगा, ये भी गलत है जब आदमी सोचते हैं कि वे औरत से बढ़कर है। ये सच्चाई से बहुत अलग है। धर्मशास्त्र बतलाता है कि स्वर्ग पिता ने औरत को जो बहुत बड़े और सब कुछ बनाने की आखिरी में औरत को बनाया है। इसके बाद दुनिया बनाना की कार्य को पूर्ण और अच्छा कहा है। प्रेजेंट हिंकली ने हमारे पत्नी आजी नानी और सभी बहनों और लड़कियों के लाइव्स विषय में कहा, प्रभु की सभी बनावटों में से सबसे खूबसूरत वो प्यारी परमेश्वर की बच्चाई है जो पवित्र है और जो बच्चियां अपनी शारीरिक का आधार और सम्मान देती है और जो अपनी बुद्धि की हमेशा पवित्र आत्मा से सच्चियों के विषय में सिखलाती है। स्वर्ग अनुसार औरत आदमियों से कई विशेष में अलग है। औरत दयालु है और दूसरों में ज्यादा ध्यान डालती है। उनका दयालुता के कारण वे समझने लगते हैं कि यीशु की मदद से वे दूसरों की ज्यादा मदद कर सकते हैं। कुछ दुखी हो जाती हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि वे कम मदद करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि गिरजा की कई सच बातें आज महसूस करते हैं। इसलिए तुम पति और बच्चों अपने पत्नी और माता को धन्यवाद दी करो। अपना प्रेम और धन्य हमेशा बतलाओ। स्वर्ग पिता के बच्चों की जिंदगी खुशहाली और आनंद से झूम उठेगी जब हम ऐसा बातें उनसे कहेंगे जिससे धन्यवाद उनको मिलना चाहिए। पति, तुम अगर महसूस करो कि तुम्हारी पत्नी को मदद की जरूरत है, अपने बहनों में लेकर उनसे बतलाओ कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। मैं इच्छा करता हूँ कि हम उनके साथ निर्मल और प्रेम से रहेंगे। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है। मैं आज्ञा देता हूं कि अगर तुम से कोई एकता से अपने पत्नी के नहीं रहते हो तो तुम ही आज्ञा का पालन कर जो प्रभु ने दिया है। एकता से अगर पति और पत्नी प्रभु की आज्ञा को माने तो उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी। बहुत समय हम इसके मूल्य नहीं समझ सकते हैं। हम इसमें ना हो। देखो, एक आदमी ने अपनी पुरोहित को पापों का कारण खो दिया है। मैं जानता हूं जो विशाल खुशी आनंद मुझे अपनी पत्नी के प्रेम और सम्मान से मिलती है। मैं आशा करता हूं कि आपका भी ये मिली है आपसे पुरोहित और अपने पत्नियों को तरह की वार्ताओं से रहता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के एक बारह चेला होकर मैं अपने अनुभव प्रिस्टुड के विषय में प्रेजेंट हॉवर्ड डब्ल्यू हंटर के बयान से देता हूँ। उद्धारकर्ता का विषय दर्शक होकर हम इस गिरजाघर के कार्य और उनके बच्चों की सेवा करते हैं। हमारा बुलावा के कारण चाहिए हम बुद्रे या थके हैं, हम कार्य करते हैं। उसने हमें आखिरी दम तक ये करने को कहा है। परमेश्वर को हमने उधार देना पड़ेगा कि कैसे हम उनके बेटियों को वार्तो करते हैं। इसलिए हमारा वर्ताव ठीक होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमें रास्ता दिखलाएगा कि हम अपने प्रिस्टुड अच्छी से इस्तेमाल करें, ज्यादा करके उनके बेटियों पर। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
I speak this evening.
इस सांझ को मैं यीशु की प्रायश्चित और सैक्रमेंट जो एरोनिक प्रिस्टुड से किया जाता है के विषय में बतलाता हूँ। मैं एक छोटी सी पवित्र लेख इस्तेमाल करूँगा जो मुझे यीशु की दया दिखलाता है या पात्र है सुरक्षा की बाहों में। एक परिवार अमेरिका के ग्रैंड कैनियन की पहाड़ों की सीमा में खड़े तस्वीर ले रहे थे। उनको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और वे तुरंत 2 साल की एक बच्ची को नीचे गिर चुकी थी उनको पाया। वह बच्ची ऊपर चढ़ने की जितनी कोशिश कर रही थी वह फिसलते वहां पहुंच रही थी जहां से वह 200 फीट की खतरनाक गहराई में गिर सकती थी। एक 19 साल का जवान जिसका नाम इयन था ने उस बच्ची को देखा और अपनी इमरजेंसी ट्रेनिंग में उसने सीखा था कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तुरंत उनको याद आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने कैमरे को नीचे रखा और बच्ची की ओर गया। वह खुद नीचे नहीं फिसला और 1 घंटे तक उस बच्ची को अपने पास अपने बाहों में रखा कि वह बच्ची और नीचे ना फिसल सके। वहाँ उसने इमरजेंसी टीम का इंतज़ार किया जिन्होंने उनको बचाया। मेरा ध्यान इस बात पर पड़ी कि उस व्यक्ति ने बच्ची को अपने बाहों में पकड़ा था, क्योंकि धर्मशास्त्र हमें प्रेम की बाहों, दया की बाहों और सुरक्षा की बाहों के विषय में बतलाता है। बाहों की सुरक्षा में घेरना एमोलोक की संदेश में से आती है जो उन्होंने जोरमाइटियों को यीशु की प्रायश्चित के विषय में दिया था। उन्होंने सिखलाया कि यीशु की बलिदान ने मुमकिन किया है कि व्यक्ति यीशु पर विश्वास और पश्चाताप करे। इस प्रकार दया न्याय की मांग को संतुष्ट करती है और उसे सुरक्षित की बाहों में ले लेती है। सुरक्षा की बाहों को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हम याद रखें कि यीशु ने ठोस चीज़ें जैसे सिक्का, बीज, बेतरिया, पाव रोटी, मछली और अनेक चीज़ें सिद्धांत सिखलाने के लिए इस्तेमाल किया था। बाहें ठोस हैं और हम उन्हें प्रेम और स्नेह दिखलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं घर लौटता हूँ अपने पत्नी अपनी बीवी को ठोस भाव में पाता हूँ। जब मैं लैटिन अमेरिका जाता हूँ सेवा के अनुसार वहाँ मैं लोगों की अब्राजो यानी बाहों से स्वागत होता हूँ। जब मैंने सोचा कि यीशु की प्रायश्चित को कैसे दूसरों को सिखलाना चाहिए तब सुरक्षा की बाहों को लाभदायक पाता हूँ। बपतिस्मा के बाद जब हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है उस समय हम 2 अभिषेक की सुरक्षा की बाहों में प्रवेश लेते हैं। इनकी बाहों को हम फिर महसूस करते हैं जब हम पश्चाताप और नेक हृदय के सैक्रमेंट को लेते हैं। डॉक्ट्रिनल कवनेंट की अध्याय 110 से हम सुरक्षा की बाहों के विषय में सीखते हैं. प्रोफेसर जोसेफ स्मिथ ने कैटलन मंदिर की संपन्न के समय समझाया कि उन्होंने पुरोहितों को के साथ सैक्रमेंट को वहां गिरजा के लोगों को दिया है. इस पवित्र कार्य के बाद जोसेफ स्मिथ और ओलिवर काउड्री प्रार्थना करने के लिए गए. प्रार्थना के बाद यीशु इन दिनों दोनों के मध्य प्रकट हुआ और बोला, सुनो, तुम्हारे पापों को क्षमा किया गया है. तुम मेरे सामने निर्दोष हो, इसलिए अपने सर को उठाकर आनंद मनाओ. उन 1836 कैटलन मंदिर के सभी कार्य हमारे इस दिन की तरह है. हर सैबत दिन तुम पुरोहित युवक के संतों को सैक्रमेंट देते हो, जो सैक्रमेंट सभा प्रार्थना लिए आत्मिक इलाज के भूखे इन बातों को अपने हृदय और मन से सुनने के लिए आते हैं कि सुनो, तुम्हारे पापों को क्षमा किया गया है. तुम मेरे सामने निर्दोष हो, इसलिए अपने सर को उठाकर आनंद मनाओ. एल्डर डेलन एच ओक ने बयान दिया है कि सैक्रमेंट में आत्मिक शुद्धता और घाव भरने की शक्ति है. सैक्रमेंट में हम अपने बपतिस्मा की आशीर्वादों को और वादों को फिर से बनाते हैं. हमें आज्ञा दिया गया है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और हम सैक्रमेंट को टूटे हुए हृदय और नम्रता से लें. जब हम ब्रेड को लेते हैं, हम वादा करते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम को अपने ऊपर लें और उनकी हमेशा याद और आज्ञा का पालन करें. जब हम इस वचन को निभाते हैं, प्रभु हमें बपतिस्मा की तरह हमें साफ कर देता है. हम शुद्ध हो जाते हैं और उनकी पवित्र आत्मा हमारे साथ होती है. एरोनिक पुरोहितों को गिरजा के नियम अनुसार संतों को सैक्रमेंट देना चाहिए, जिससे संतों को बाहों की सुरक्षा मिल सके. हर एक पुरोहितों को याद करना चाहिए कि उन्हें प्रभु की जगह आदर्शपूर्ण और प्रतीक्षा से कार्य करना चाहिए. अक्सर हमारे नियोक उदाहरण होते हैं, लेकिन सैक्रमेंट के समय अपने शुद्ध आभास से फिसल जाते हैं. युवकों, कृपया गिरजा जाने से पहले अपने आप को शीशे में देखकर पूछो कि जैसे तुम दिखते हो सही है या नहीं. अच्छा होगा अगर तुम अपने माता पिता से सलाह लो कि तुम कैसे दिखते हो और उनकी सलाह को सुनो. यीशु मसीह का सच्चा सेवक अच्छी तरह साफ सुथरा रहता है, जिससे कि उनमें यीशु ही नजर आए और दुनिया की लापरवाही नहीं. पवित्र आत्मा उनके साथ रहता है, जो सभी कार्य को पूर्ण से संभालता है. संतों जो सैक्रमेंट लेने आते हैं, एरोनिक पुरोहित के कारण उनके शुद्धता बहकना नहीं चाहिए. प्रेसिडेंट मॉन्सन की संदेश से हम देखते हैं कि प्रस्तुत पाना एक सौभाग्य है. ये सेवा की जिम्मेदारी है, मदद करने की सौभाग्य है और दूसरों को आशीर्वाद देने का मौका है. मैं बयान देता हूँ कि सैक्रमेंट देने के समय यह भी लागू है. जब मैं बिशप था, मैंने ईशो की प्रायश्चित की आशीर्वाद को उन संतों के ऊपर देखा जिन्होंने घोर पाप किए थे. इज़राइल की निर्णायक होने के कारण मैंने इनके पाप स्वीकारते सुनकर उनको सैक्रमेंट लेने से रोक दिया. एक युवक डेट करते समय अपने भावनाओं को रोक ना सका और घोर पाप में फिसल गया. वह मेरे पास सलाह और मदद के लिए लिए आया, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रभु और उनके पाप स्वीकार के कारण मैंने उनको सैक्रमेंट को कुछ समय लेने से रोक दिया। मैं उनसे मिलता रहा उनके पश्चाताप को देखने के लिए और सही समय में उनको सैक्रमेंट लेने के लिए अधिकार दिया। जब मैं चैपल में बैठा, मेरी आंखें उस पर थी, क्योंकि अब वह सैक्रमेंट योग्यता से ले रहा था। मैंने दया की बाहें, प्रेम और सुरक्षा देखी, जिसने उसका घाव भर दिया था और उनको यीशु की प्रायश्चित ने उसे क्षमा कर दिया था। प्रेसिडेंट पेका की सिखलाई हुई सच्चाई मैंने अनुभव की है। उसने सिखलाया, कुछ समय हम सोचते हैं कि यीशु का प्रायश्चित सिर्फ हमें जिंदगी के बाद मौत और पाप से बचाने के लिए है, लेकिन यह इससे और ज्यादा बढ़कर है। यह शक्ति हमेशा हमारे जीवन में मदद करने के लिए है। जब हम पाप से अंधेर में हो जाते हैं और अशांति छा जाती है, वह हमें बचा सकती है। हम यीशु की प्रायश्चित को पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन हम प्रभु की शांति, जो सभी समझ से ऊपर है, को महसूस कर सकते हैं। मैं पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। मैं अपना विश्वास, प्यार, वफादारी और श्रद्धा उन पर करता हूँ। मैं बयान देता हूँ कि परमेश्वर ही हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
मैं आज अरोनिक प्रिस्टूट के भाइयों से बोल चुका हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अपने आप को समझने में मदद करूँ, जीवन का लक्ष्य जान उसमें सफलता पाने की रास्ता दिखाऊं। तुम इस दुनिया में एक बहुत खास समय में आए हो। हम एक बड़ी लड़ाई के अंत में हैं। ये लड़ाई दुनिया के ने से पहले शुरू हुई और दुनिया के इतिहास पर चली है। मैं मसीह के चेलों और उनके भगवान नहीं मनाने वालों के बीच लड़ाई और बारे में बोलता हूँ। जॉन द रेवलेटर ने लड़ाई के बारे में कहा, एंड देयर वाज वॉर इन हेवन, माइकल एंड हिज एंजल्स फॉट अगेंस्ट द ड्रैगन, एंड द ड्रैगन फॉट हिज एंजल्स, प्रिवेल्ड नॉट, नीदर वाज देयर प्लेस फाउंड इन एनी मोर इन द हेवन, एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट, एंड द ओल्ड सर्पेंट कॉल्ड द डेविल सैटन व्हिच डिसीव्ड द होल वर्ल्ड, ही वाज कास्ट आउट ऑफ द अर्थ and his angels were cast out with him. Satan ne is premortal ladai ki shuru ki. Usne bhagwan ke apne bachchon ke nirvishe plan se masi ki khilaf jaakar kiya. Uski wapas se pita ki ek tikhai bachche Satan ke piche gaye, par do tikhai nahi gaye. Tum mere jawan dosto un mein se the. तुम धरती पर भगवान के खुशी के प्लान के पालन के लिए आए हो। शैतान की लड़ाई उसके स्वर के निकलने के खत्म नहीं हुई। जैसे जॉन ने कहा, शैतान और उसके चेलों को धरती पर भेजा गया बड़े गुस्से के साथ। उसके गुस्से को और खून खराबा में देखा जा सकता है। महसूस मनुष्य पहले से दुरुस्त है। मनुष्य पर इस गर्व के सिर्फ भगवान पूरी तरह समझ सकते हैं। जो रोया जब उसने इस खून खराबे को देखा।
and reclaim it
as अपने आप को धरती पर इतिहास अदर जहां से उन्हें तैयारी गया है और उसने बनाएंगे उस दिन वो शैतान और उसके सेना को दबा शांति के हजार साल शुरू हो उस दिन के भगवान ने अपने राज्य को धरती पर पूर्ण जन्म वो राज्य है द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स उसके अलावा भगवान ने राज्य को स्थापित करने के पहले कोशिश की फैल गया हन थोड़ी सफलता मिली पर भगवान ने राज्य को पहले कभी आदमियों के बीच स्थापित नहीं किया गया यह भगवान का आखिरी पुनर्स्थापित क्रम अलग है वो नहीं हारेगा उसकी सफलता के लिए भगवान एक नियम का आखिरी पूर्ण स्थापित किया पहले से कभी भी इन आखिरी दिनों में भगवान ने उनके बेटी के काम के लिए सबसे बेटी और बेटियों को लाया भेजा दे बहादुरी शैतान के साथ लड़ाई में देखी है वहां उन्होंने अचानक चुना फिर विषय अच्छे काम किए उनके गुणों के भगवान के काम को ही धरती पर सस्टेन करना है ताकि आदमियों के आदमियों को शैतान से बचाया जा सके मेरे एरोनिक प्रिस्टुड के जवान दोस्तों तुम पिता के वो बहुंदु बेटे हो तुम उनके घर की शक्ति हो उनके सैनिक हो तुमने अच्छे कोई गलत पर चुना बड़ा विश्वास जताया है और तुम्हारे काम के वजह से तुम धरती पर इन आखिरी दिनों भेजा गए हो तुम वो वापस इच्छा चुप सके हो विश्वास के काम लो आकर अच्छे काम करो इस धरती पर भगवान की राज के लाइए and to do so in behalf of the kingdom of God on the earth and your fellow man. भगवान का राज्य जब इतना शक्ति के पुनर्स्थापित हुआ है शैतान जानता है कि उसके पास कम समय है वो जानता है कि राज्य को सिर्फ उन लोगों के पाप मिटा सकता है इसलिए वो हर तरह से तुम्हें प्रलोभन देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सफल हुआ तो वो तुम्हें फुल टाइम मिशन नहीं करने देगा टेंपल में शादी कभी नहीं होगा और तुम्हारे बच्चों को धर्म में भी नहीं वो तुम्हें कमजोर नहीं बनाता है पर गिरजे को भी कभी मत भूलो कि उसके लड़ाई में उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर है तुम जो भगवान के नियम के पालन करते हैं और यीशु मसीह के बयान को रखते हो मेरे दोस्तों आने वाले दिन मुसीबत भरे रहेंगे इस भरे में प्रेसिडेंट बोइट के पेका ने कहा है गिरजा इस धरती के इतिहास में आज की स्थिति की तरह कुछ नहीं है सोडम और गोमोरा में आज से ज्यादा कुछ पाप नहीं हुआ हर जगह गंदे शब्द और भगवान की गाली है वो पहले अंधेरे में होते थे और अब खुली जगह होते हैं गवर्नमेंट की सुरक्षा में सोडम और गोमोरा में चीज वो दुनिया भर में हमारे आज की स्थिति में मैं उस मतलब कि तुम बहुत सोच समझ कर काम करो उस प्रकार अच्छा निर्णय होगा इसलिए प्रॉफिट नव युवा को समझदार बनाने के कहता है ध्यान रखो कि मोमन ने देखा है हिलमन के सैनिक लड़ाई में सफाई हुआ सिर्फ सदस्य मोमन को वो पसंद था और उसने पास भी था नेफाइट देश के पवित्र लेखों की मोमन को 10 साल की उम्र में दिया गया क्योंकि वो जल्दी सीखने वाला समझदार बच्चा था और मोमन ने 15 साल की उम्र में समझा कि भगवान उसका सामने आया और वह यीशु की इच्छा जो जान पाया क्योंकि वो समझदार दिमाग का था तो जिसे हम शैतान के खिलाफ लड़ाई की आखिरी दिनों में आते हैं हम दुनिया में समझ से रहने हैं अगर हम दुनिया के जैसे करेंगे तो वो हमारी आत्माओं को कमजोर करेगी हमारे जीवन में पवित्र मिशन की फसल कर सकता तुम ड्रग्स शराब और तंबाकू के नहीं ले सकते हो तुम अश्लीलता में भाग नहीं ले सकते हो, तुम गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम शारीरिक तो टैटूज और पिशिंग्स के करीब नहीं खराब नहीं कर सकते, तुम इन्हें अगर करोगे तो तुम अपने आत्मा के लड़ाई में फिसल होगे, दूसरे की आत्माओं की बचाव की बात हो छोड़ो। इस शैतान की खिलाफ लड़ाई में तुम्हें हारना है जिससे पहले हारना गया, जब स्वर्ग की लड़ाई में सफलता है, एक बड़ी ने आवाज ने कहा।
Now is come salvation and strength
and the kingdom of God and the power of his Christ, for they have and his angels have come, referring to the devil by the lamp and the word of the testimony, for they have loved not their own lives, they kept the testimony even unto that. दूसरे शब्दों में शैतान वो पहले मसीह में और उसरे बलिदान में विश्वास और हराया गया और फिर भगवान के बयान की अंत तक रखना है और उनके काम में लगे रहना है। अगर प्री मॉर्टल जीवन में भगवान में विश्वास बयान और सेवा जीते तो जीवन में भी वैसा ही होगा। तुम ये तुम्हारा पहले से साथ देगी। तुम सोचोगे कि गहरा विश्वास कैसे मिलता है। आदम और ईव ने दुनिया में आने पर शैतान को हराने के लिए विश्वास को पाने का तरीका बनाया। उन्होंने भगवान का नाम लिया एंड फिर भगवान उसके बोला, जैसे जोसेफ स्मिथ ने, एक शांत जगह जाओ, स्क्रिप्चर बयान का हिम में उनकी तरह तुम बुलाओ सुनो, आवाज की स्क्रिप्चरों के अपनी बड़ाई में सुन सकते हो भगवान की सेवा के बयान में और पवित्र हिमों के गाने और सुनने में। सिर्फ शांत के छोटी आवाज को सुनना, तुम्हारी आत्मा में इसे प्यार और आशा से तुम्हें दिया गया है निर्देशन काम करने की प्रेरणा मिलेगी। शायद भगवान कहेंगे कि तुम अपने दिमाग को साफ विचार से भरो, अच्छे दोस्तों को ढूंढो, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी की ज्यादा चाहो और वो मिशन पर जाओ जिस पर तुम जाना नहीं चाहते थे, चाहे वो चाहे तुम्हें मना चाहे उनकी इच्छा करने से तुम ये गहरा भरोसा करो। भगवान के शब्द को ढूंढो, सुन के पालन करो, शैतान के हारने के लिए ये गहरा विश्वास है। सुनकर आदेश पालन में करो और कि यीशु मसीह उनके बातें हैं और मसीह है, मैं बयान देता हूँ कि भगवान और उनके बेटे का बयान और विश्वास से हम शैतान को पार से हार पाएंगे।
Take the shield of faith wherewith ye shall quench all the fiery darts of the wicked. Fight then the good fight of faith.
और रास्ता अपनाओ और लड़ाई करो शैतान से और खड़े हो जाओ और परमेश्वर के चमत्कार देखो। मैं तुमको दिखाता हूँ कि वो तुमको चमत्कार दिखाएगा परमेश्वर, और मैं ये बयान देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
Thank you, brethren.
Thank you, bhaiyo. Choir congregation, ab khade hoke gaayenge. Praise to the man. President Dieter F. Ustob, jo pehle presidency mein dusre counselor ke hain, wo fir hume bolayenge. Jiske baad hum fir President Henry B. Eyring se sunenge, jo pehli presidency mein hai.
Singing by the choir and congregation.
Pehle counselor hai.
Come here. My beloved brethren,
मेरे प्यारे भाइयों, मैं सम्मानित हूँ कि आज मैं आपके साथ में वर्ल्ड वाइड पीस गैदरिंग में इकट्ठा हूँ और प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन, प्रेसिडेंट नायरिंग की उपस्थिति के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हम आपको आपके विश्वास और आत्मिक शक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके भाई। कुछ साल पहले मेरे जो मीटिंग हाउस है वो डार्मस्टाट जर्मनी में, वहाँ कुछ भाइयों ने एक ग्रैंड पियानो को चैपल से पड़ोस के कल्चरल हॉल में ले जाने की सोचा, क्योंकि उन्हें एक संगीत कार्यक्रम की जरूरत थी। उनमें से कोई भी प्रोफेशनल मूवर नहीं था, वो पियानो बहुत ज़्यादा भारी था, जो काफ़ी भारी था। उसे चैपल से जब कल्चर हॉल जाने लग गया तो वैसा लगा कि वो नामुमकिन था। वो हर कोई जानता था कि उस काम के लिए सिर्फ शारीरिक शक्ति की नहीं पर बहुत संतुलन की भी ज़रूरत थी। लोगों को ये बहुत आइडिया आए पर उनमें से कोई भी पियानो को ढंग से संतुलित नहीं कर पाया। तो उन्होंने फिर अपने भाइयों को ताकत, ऊंचाई और उम्र के अनुसार अदला बदला, पर कोई भी सफलता नहीं मिली। जैसे वो पियानो के आसपास खड़े थे ये नहीं जानते हुए कि वो आगे क्या करेंगे। मेरे एक अच्छे दोस्त जो ब्रदर हाना लुशी थे, उन्होंने कहा, भाइयों करीब खड़े होकर जहाँ आप खड़े हों वहीं से पियानो को उठाइए। वो बहुत साधारण सा जो आप लगा, पर उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है हम ऐसा करेंगे। और जहाँ वो खड़े थे वहीं से उन्होंने पियानो को उठाया और उसके बाद ने पियानो अपने आप ऐसा लगा कि कल्चरल हॉल में चला गया। वो चुनौती का जवाब था, उन्हें सिर्फ साथ में खड़ा होकर उसे उठाना था जहाँ वो खड़े थे। मैंने कई बार ब्रदर लुशन के साधारण हल के बारे में सोचा है और उसके गहरे सत्य से कुछ सीखा है। आज मैं उसके बारे में थोड़े विस्तार से बताना चाहूंगा। ये साधारण लगता है पर जहां हम खड़े हैं अगर हम वहां से उठाएं, वो एक शक्ति का नियम है। मैं जिन प्रीस्टहुड के भाइयों को जानता हूँ वो जानते हैं इस नियम को और उस नियम के अनुसार जीते हैं। वो काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, चाहे वो किसी तरह का काम भी हो। वो अपनी प्रीस्टहुड के अनुसार अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। वो अपने बुलावों को मैग्निफाई करते हैं। वो भगवान की सेवा करते हैं दूसरों की सेवा करने के द्वारा, और वो साथ में खड़े होकर और उठाते हैं जहाँ वो खड़े हैं। पर वो जो भी हैं उनमें से वो भी हैं जो इस हल को समझ नहीं पाते हैं, और वो दो तरह के होते हैं, जो एक नेतृत्व को चाहते हैं और दूसरे जो छुपना चाहते हैं। वो या तो एक ताज चाहते हैं या फिर गुफा में घुसना चाहते हैं। जो नेतृत्व को पाना चाहते हैं उन्हें लगता है कि वो और ज्यादा कर सकते हैं। कुछ सोचेंगे, अगर बिशप होता तो मैं एक बड़ा बदलाव ला सकता था। वो समझते हैं कि उनके गुण उनके बुलावों से बहुत ज्यादा हैं, और वो अगर एक नेतृत्व की बड़ी जगह में होते तो वो मेहनत करके एक बदलाव ला सकते हैं। पर वो सोचते हैं कि मैं एक होम टीचर या कोरम प्रेसिडेंसी या में काम करके क्या प्रभाव ला सकता हूँ। जो छुपने हैं वो सोचते हैं कि वो गिरजे के कामों करने के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। जब भी चैपल को साफ करने का मौका आता है, मेंडेस परिवार को मूव करने में मदद करने का आता है, उनके पास में हमेशा एक बहाना होता है। 20 साल पहले प्रेसिडेंट एज्रा थाफ बेंसर ने रिपोर्टों को बताया जिसमें बिशपोर स्टेक प्रेसिडेंट ने कहा था कि कुछ सदस्य बुलावों को ठुकरा रहे थे ये कहकर कि उनके पास समय नहीं था। दूसरों इन बुलावों को स्वीकार करते रहे थे पर उनके बुलावों को वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने और कहा, भगवान तुमसे चाहता है कि हम सब उनके इस गिरजे में बुलावे को उस तरह करें कि दूसरों को हमारे प्रभाव से और हमारे गुणों से आशीर्वाद मिले। पर मजे की बात यह है कि उन दोनों नेतृत्व को चाहने वाले और उससे छुपने वाले लोगों में एक चीज एक जैसी है, वो है मतलबीपन। एक बेहतर तरीका है जिसे मसीह ने खुद सिखाया है। Whosoever will be the chief among you, let him be your servant. जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तब हमें अपने मतलबीपन से प्रेरणा नहीं मिलेगी, पर प्यार से, जहां हम खड़े हैं। उसी तरह से मसीह ने अपने जीवन को जिया, और हम प्रीस्टूड के जो होल्डर हैं, हमें उसी प्रकार से जीतना है। मसीह ने कभी भी आदमियों के औहदों की परवाह नहीं करे। शैतान ने उसे पूरे दुनिया की चीजों को दिया, पर मसीह ने उसे तुरंत से ठुकराया। अपने जीवन में मसीह ने कभी को ऐसा नहीं लगा कि वो थके हैं, और जहाँ खुद के लिए उनके पास समय नहीं था, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए समय निकाला, जो बीमार थे, जिनके पास दुख था, और जो गरीब थे। उनके इस चमचमाते मिसाल और उदाहरण के बावजूद हम बहुत आसानी से औधों को पाने में फंस जाते हैं और भगवान की सेवा नहीं करते अपने पूरे दिल और दिमाग और शक्ति के द्वारा। जब हम सब भगवान के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे, क्या वो हमारे उन औधों के बारे में सोचेगा? क्या वो सोचेगा कि उन जो भी औहदे हैं उनके बारे में सोचेगा? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पिता, पति और प्रीस्टहुड होल्डर का है। क्या तुम सोचोगे कि वो हमारे पास कितने काम थे कि हम गिरजे के महत्वपूर्ण बुलावों में काम नहीं कर पाए? क्या वो तुम ये सोचते हो कि अपने दिनों को हम अपॉइंटमेंट से पूरा भरते हैं और उस बहाने को सेवा से नहीं करते हैं, उसकी बात वो हम वो सुनेगा? भगवान हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से न्याय कर देता है। वो अच्छे सेवक से खुश है, पर वो खुद के सेवा करने वाले व्यक्ति से नहीं। जो इस जीवन में सस्ते कपड़े पहनते हैं, वो आने वाले जीवन में ग्लोरी के ताजों को पहनेंगे। मसीह ने डॉक्ट्रिन में खुद को बताया है उस अमीर आदमी की कहानी है जो महंगे कपड़े पहनता था और हर दिन बहुत अच्छा खाना खाता था, और जो भिखारी लाजरस था, वो सिर्फ चाहता था कि वो उस अमीर आदमी की टेबल पे से बचे कुछ टुकड़े को खा सके। अगले जीवन में लाजरस अब्राहम के साथ में खड़ा हुआ, और जो अमीर आदमी था वो उसे नरक में फेंका गया। अगर हम उस ग्लोरी को देख सकें, तो हम अपने आप को सबसे जॉन रो मॉयल का आज 200वां एनिवर्सरी है। वो गिरजे में इंग्लैंड से आए और उन्हें सॉल्ट लेक वैली में हैंडकार्ट कंपनी का भाग लेकर एक घर को बनाया वैली के अंदर। जॉन एक पत्र काटने वाले थे, और उस काम की वजह से उन्हें सॉल्ट लेक टेंपल में काम करने के लिए बोला गया। हर मंडे को जॉन 2 बजे रात में घर से जाकर 6 घंटे चलकर अपने काम पर बराबर टाइम से पहुंचते थे, और वो फ्राइडे को 5 बजे घर के लिए चलते थे, और करीबन 12 बजे रात में घर पहुंचते थे। वो उन्होंने सालों साल किया। एक दिन जब वो अपने घर पर अपने काम कर रहे थे, एक गाय ने उनको टांग मारी, और उसकी वजह से उनके कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। जब दवा की कमी थी, उसकी वजह से उनके पास में सिर्फ एक ही विचार बचा था कि उनकी टांग को काट दिया जाए। तो उनके दोस्तों परिवार ने उन्हें एक दरवाजे पर बांधा और उनके घुटनों से नीचे से कुछ इंचों को काटा। इस प्रकार काटने के बावजूद वो पांव ठीक होता गया। जब जॉन अपने बिस्तर में खड़े हो सके, तो उन्होंने एक बेहतरीन जॉइंट को बनाया जिससे वो चल सके। इस पर चलने पर उन्हें बहुत दर्द हुआ, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने क्षमता को वो धीरे धीरे बढ़ाते गए जब तक वो 22 माइल की जो यात्रा थी सॉल्ट लेक टेम्पल तक वो हर हफ्ते कर सकें, जहां वो फिर उन्होंने अपना काम वापस चालू किया। उन्होंने उनके हाथों ने टेम्पल पर होलीनेस टू द लॉर्ड के शब्दों को कार्व किया। जॉन ने ये आदमी की प्रशंसा के लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भी हटे नहीं, पर उनके पास में हर कारण थे। वो जानते थे कि भगवान उनसे क्या चाहता था। सालों बाद जॉन के जो पोते थे हेनरी डे मोयल, उन्हें कोरम ऑफ द 12 के सदस्य के रूप में बुलाया गया। उसके बाद में उन्हें गिरजे की पहली प्रेसिडेंट में सेवा करी। प्रेसिडेंट मोयल की इन बुलावों बहुत सम्मान की बात थी, पर उनकी दादा जॉन की जो सेवा थी उसे कम लोग जानते हैं, पर वो भगवान के सामने एक जैसी है। जॉन का जो चरित्र था वो बलिदान के धरोहर पर निर्भर है। जिस प्रकार उन्हें विश्वास से अपने परिवार और गिरजे की सेवा करी। जॉन रॉयल मॉयल समझते थे उस चीज का कि जहां तुम खड़े हो वहीं से उठाओ। हिलमैन के 2000 सैनिकों का उदाहरण, खुद के रिकग्निशन को सेवा का महत्व में जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हिलमैन के 2000 बेटों के नामों को नहीं जानते हैं। अकेले व्यक्ति के रूप में हम उनको कभी नाम को जान नहीं पाएंगे, पर एक साथ वो गाने और कई सरमनों का विषय बने हैं और वो हमेशा भगवान की सेवा करने का उदाहरण बनेंगे। उन्होंने साथ में वो किया जो वो अकेले कभी भी नहीं कर सकते थे। वहाँ एक हमारे लिए सीख है, जब हम करीब होकर साथ खड़े होकर उठाते हैं तब भगवान के राज्य में हम और ज्यादा काम कर सकते हैं। हर बुलावे में बढ़ने के लिए और सेवा करने के लिए मौका है। कोई बुलावा हमसे छोटा नहीं है, क्योंकि उसमें सेवा करने के लिए बढ़ने का मौका है। भगवान ने इस गिरजे को इस तरह स्थापित किया है कि हर सदस्य को सेवा के लिए एक मौका मिले, जिससे फिर हम अपनी आत्मिक प्रगति के लिए इस्तेमाल करें। चाहे तुम्हारा बुलावा जो भी हो, मैं तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं, अपने शक्ति दे दूसरों को आशीर्वाद देने की कोशिश करो, ताकि वो बन सकें जो स्वर्गीय पिता तुम्हें बनाना चाहता है। जब तुम जायन की हम स्टेकों में जाते हैं स्टेक प्रेसिडेंसियों को बनाने के लिए, मुझे कई बार आश्चर्य होता है जब इंटरव्यू में एक भाई कहता है कि उसे लगता है कि अगला स्टेक प्रेसिडेंट उसे होना चाहिए। जब मैंने इसे पहली बार सुना तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसे किस तरह से जवाब दूं। कुछ समय बाद मुझे पवित्र आत्मा ने उसे समझाया। मैंने जाना कि भगवान हर व्यक्ति को कुछ बुलावे को देता है। कभी कभार वो आत्मिक प्रेरणा देता है हमें कि हम बिशप या स्टेक प्रेसिडेंट बनने के लायक हैं। वो भगवान से आत्मिक आशीर्वाद है, एक ज्ञान जिससे हमें पता चलता है हम की सेवा करने के लिए लायक हैं।
This is not my calling for you.
पर अगर तुम सेवा करने के लायक भी हो तो वो तुमसे कहेगा ये तुम्हारी कॉलिंग मेरे द्वारा तुम्हारी कॉलिंग नहीं है। भगवान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा है और वो उसी हिसाब से हमें बुलावा देता है जिसे हमें करना है। हर प्रीस्टहुड होल्डर एक खास जगह में खड़ा है और उसे एक खास काम करना है। हम सब ने प्रेसिडेंट मानसून के बूढ़े लोगों को मिलने जाने की कहानियों के बारे में सुना है, फिर उनकी और जहां वो उनके जाके उनकी जरूरतों को पूरा कर उन्हें प्यार और सहायता देकर उन्हें खुशी देते हैं। मैंने जाना कि एक रविवार ये कि अच्छी बात नहीं होगी प्रेसिडेंट मानसून इस तरह से हर गिरजे के हर परिवार को मिलने जाए, वो अच्छा हो गया, पर वो नहीं कर सकते और उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने प्रेसिडेंट मानसून की जगह तुम्हें उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा गया। ये अच्छे होम टीचरों के रूप में तुम्हारा जिम्मेदारी है। भगवान ने प्रेसिडेंट मानसून को ये नहीं कहा है कि फैमिली होम इवनिंग को ऑर्गेनाइज करे, वो इसराइल में एल्डर और पिताओं के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें लगा कि दूसरे हैं जिन्हें ज्यादा लायक हैं या अनुभवी हैं, जो कॉलिंग को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, पर भगवान ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है कारण की वजह से। कई दिल और लोग हो सकते हैं जिससे तुम ही छू सकते हो, वो और उसे कोई भी तुम्हारी तरह ऐसा नहीं कर पाएगा। हमारे स्वर्गीय पिता ने तुम्हें कहा है कि तुम उनकी जगह अच्छे कामों कर लोगों के जीवन में आशीर्वाद दे। वो चाहता है कि हम प्रीस्टूड की शक्ति को अपने दिलों और दिमागों में उतारो।
Brethren, as strong as you are,
भाइयों तो हम दूसरे बुलावों को पाना की इच्छा बंद करके काम करना है। हमें कभी भी भगवान का काम अकेले नहीं करना है। अगर हम साथ में इकट्ठा होकर खड़े होकर किसी चीज को उठाएंगे तो हम उसमें बिल्कुल सफलता पाएंगे। फिर कोई भी इस काम को नहीं रोक पाएगा। भाइयों, मैं आशा करता हूं कि हम बुलावों को पाना की इच्छा बंद करें, काम करें। हम आशा करते हैं इस गहरे पाठ को याद रखें कि हम भगवान यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा और विश्वास से हर किसी के ज़ायन में लाते हैं और एक साथ वादे से साथ खड़े होते हैं ताकि हम खड़े होकर उठा सकें। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं आपसे विदा बोलता हूँ आपको मेरे प्यार और आशीर्वाद में यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
My dear brethren,
मेरे प्यारे भाइयों, मैं उन भाइयों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ जिन्हें कभी कभी अपनी जिम्मेदारी ज्यादा महसूस होती है। इस चुनौती के विषय पर मैंने पहले बातें कर चुकी है, मैं फिर से इसके विषय में बातें करना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी में लौट आया है। आप सब शायद ये समझ रहे हैं कि पुरोहित की फर्ज आपको इतना ज्यादा करा रहा है जितना आप नहीं कर सकते। ऐसा आपने महसूस किया होगा जब आपको स्टेक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया हो। नया मेंबर को ने ऐसा महसूस किया होगा जब उनको पहली बार प्रार्थना के लिए बुलाया गया हो। अगर उस समय आपने नहीं समझा हो तब आपने जरूर वैसा समझा होगा जब आपके मिशन प्रेसिडेंट ने आपको एक अनेक शहर में यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने के लिए बुलाया होगा। आपने सोचा होगा जब मैं मिशन समाप्त करूंगा तब एक सच्चा पुरोहित बनना सरल होगा, लेकिन कुछ ही साल में आपको सोने के लिए कम समय मिल रहा होगा, बीवी और बच्चों के लिए समय नहीं मिलता, पत्नी के साथ नम्रता और प्रेम से रहना, आगे का पढ़ाई करना, एल्डर्स कोरम के सहायता करना और मंदिर में जाकर अपने पूर्वजों के लिए कार्य करना। आपने उस समय एक मुस्कुराहट लेकर सोचा होगा जब मैं इस पुरोहित की जिम्मेदारी में और दिन गुजार लूंगा तब ये कार्य सरल हो जाएगा, लेकिन आप जो उस समय से आगे गुजर चुके हैं आप पुरोहित की सेवा को जानकर मुस्कुरा रहे हैं। वो ये है, जितना लगन से आप इसमें सेवा करेंगे उतना ही ज्यादा प्रभु आपसे मांगेगा। लेकिन आपका मुस्कुराहट खुशी का है, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने आपकी शक्ति को बढ़ा दिया है। इसमें सच्चाई ये है कि क्योंकि उन्होंने आपको ज्यादा शक्ति दी है, आपको सेवा और ज्यादा लगन से करना पड़ेगा। ये ताकत बढ़ाने की तरह है, जितना आप कसरत करेंगे उतना ताकत बढ़ेगा। इतना कसरत करो कि आपका ताकत आप थक जाओ। जब आप देखेंगे कि आपका ताकत बढ़ गया है, आत्मिक शक्ति की ताकत उनके लिए परमेश्वर का देन है, जो ताकत जो थक कर उनकी सेवा में लगा रहता है। यीशु की पश्चाताप के कारण हम बदल सकते हैं, तब हमारा शक्ति उनके कार्य करने के लिए बढ़ सकता है कि हम उनकी सेवा कर सकें। उन लोगों को मैं समझ सकता हूं जो प्रस्तुत सेवा को सरल समझते हैं। मैं जानता हूं कि या तो उन लोगों ने इम्तिहान में सफलता पा ली है, या तो इम्तिहान आने वाली है। मैं उन लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि इनको कठिनाई सहना करना है। हमारी प्रस्तुत सेवा की सीमा की इम्तिहान परमेश्वर ने हमें इसलिए हमें दिया है कि हम उनके साथ रह सके। स्वर्ग पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, उनको वो आनंद जीवन देगा कि वे उनके परिवार के साथ हमेशा रह सके। हमें ये देन मिल सकता है अगर हम इस समय पापों से साफ होकर पूर्ण जीवन में जागे। उन्होंने हमें अपने एक लौते पुत्र को दिया यहोवा कि वह ये रास्ता बना सके। उद्धारकर्ता ने इस धरती पर जन्म लिया, पापों से दूर रहा और फिर गेतसेमनी से गोलगोथा तक हमारे पापों को साफ करने के लिए बलि चढ़ा। वो ही पापों से साफ हो सकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने पापों का पश्चाताप करेगा, बपतिस्मा लेगा और जो उनकी अनुबंध को बनाएगा और उनकी सभी आज्ञा का पालन करेगा। और शैतान अपने साथियों को के साथ, जो हमारे आत्माओं का शत्रु है, चाहता है कि हम आनंद जीवन कभी प्राप्त ना हो करें। आपने दयालुता और बहुत विश्वास के साथ स्वर्ग पिता और उद्धारकर्ता ने कुछ अपने बेटों को इस देश में प्रस्तुत दिया है। उन्होंने हमें शक्ति और अधिकार दी है कि हम उनके नाम के से उनकी सिद्धांत को सभी लोगों को बतलाएं। आप देखते हैं कि परमेश्वर का भरोसा हम पर है और ये कार्य कितना जरूरतमंद है, और इसमें हमें कठिनाई भी मिलेगी। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हम महसूस करते हैं कि ये कार्य कठिन है। आपका सोच कि मैं नहीं जानता कि मैं ये कर सकूंगा, इस बात की साक्षी है कि आप इस कार्य की असलियत जानते हैं। ये सत्य है कि आप अकेले ये कार्य नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी शारीरिक शक्ति के लिए बहुत कठिन है। ये समझना एक बड़े प्रस्तुत सेवा का बुनियाद है। हमें उद्धारकर्ता को याद करना चाहिए जब हम महसूस करने लगते हैं कि उनका कार्य कठिन है। वह साची देता है कि उनके कार्य में हम अकेले नहीं हैं। हमें धर्म शास्त्र सीखना और याद करना चाहिए। मैं कुछ सीख रहा हूं कि मुझे हमेशा याद रहेगा। प्रेजेंट थॉमस एंड पोर्सन ने उद्धारकर्ता की बातों को याद किया जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। उद्धारकर्ता ने इस शब्दों को अपने छोटी सी दल को दी, और जो कोई तुम्हें स्वीकार करेगा वहां मैं भी रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दाएं और बाएं में, और मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में रहेगा और मेरा दूत तुम्हारी मदद करेगा। प्रेसिडेंट मोनसन ने ये वादा जो उन्होंने याद किया था वह पूरा हो गया। मुझे आत्मविश्वास मिला, पवित्र आत्मा मिली, डॉक्टर को रास्ता दिखलाया और मैं बच गया। प्रेसिडेंट मोनसन की आशीर्वाद से और जो मैंने महसूस की है उनसे मैं हमेशा याद रखूंगा कि प्रभु की कार्य में उद्धारकर्ता हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है, प्रभु का दूत हमारी मदद करेगा। आप शायद याद करें जब इलाइशा ने अपने सेवक की मदद की थी। यह साक्षी हमारी भी है जब हम इस कार्य में कठिनाई महसूस करें। भोर को परमेश्वर की एक भक्कर का तहलवा उठा और निकल कर किया देखा है कि घोड़ों और रातों में एक दल नगर को घेरे हुए थे, और उसके सेवक ने उसे कहा, हे मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डरो, क्योंकि जो तो हमारी है वह उनसे अधिक है जो उनकी है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यीशु, हे युवा, इसकी आंखें खोल दो कि यह देख सके। तब युवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलिशा की चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। उस सेवक की तरह तुम्हारे पास भी बहुत और मदद करने के लिए है, कुछ जो तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। प्रभु तुम्हारी मदद करेगा और वह दूसरों को भी तुम्हारे मदद के लिए बुलाएगा। इसीलिए क्वारम के संचारण उनके आंखों में क्वारम की सभा देते हैं। इसी प्रकार बिशप प्रीस्ट क्वारम की अगुवाई करने से ज्यादा है, वह प्रीस्ट लोगों की शक्ल को देखता है। आपका ऐसा बिशप एल्डर्स क्वारम प्रेसिडेंट या तो मिशन प्रेसिडेंट होगा, और वह तुम्हारी मदद के लिए आएगा और तुम्हारे साथ होगा, या तो तुम्हारे लिए सच्चा साथी बुलाएगा जो तुम्हारा मदद करेगा। यह हमें दो चीजें करने की सलाह देती है। एक, जो हमारी मदद करना चाहता है, हम उन्हें जान और उनका स्वागत करें। दूसरा, कि हम सभी कार्य में दूसरों की सत्य करें। एक मिशन प्रेसिडेंट ने मुझे बतलाया था कि उनका एक एल्डर को 12 से ज्यादा अलग साथ दिया गया था। उसने मुझे कहा, उसका सभी साथी जल्द घर लौटना चाहते थे, लेकिन हमने किसी एक को नहीं खोया। एक और बात मुझे आश्चर्य लगी जब फिर बाद में उस एल्डर ने मुझसे कहा, वो ये थी, मैं नहीं समझ सकता कि यह कहानी सच्ची है, क्योंकि मेरे सभी साथियों में से कोई असफलता नहीं थे। वह मिशन प्रेसिडेंट सभी समय प्रभु की प्रेरणा से सही एल्डर को भेजता रहा। हमें भी प्रभु सही समय में ऐसा ही सहायता देता है। प्रभु हमें भी दूसरों की मदद करने के लिए भेज सकता है। मैं अनुभव से कुछ बतलाना चाहता हूँ कि कैसे मदद करना चाहिए अगर तुम्हें प्रभु भेजता है। जब 12 के चेलों में मुझे बुलाया गया था, प्रेसिडेंट फाउस ने मुझे टेलीफोन किया था। उसने मुझे ऑफिस में आने को कहा। मैं उनके पास चिंतित से गया और सोचते कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कुछ बातचीत के बाद उसने मुझसे देखा और बोला, क्या वो हो गया? मुझे हैरान देखकर उसने बोला, मैं तुम्हें मीटिंग में देख रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम महसूस कर रहे हो कि इस बुलावे के लिए तुम योग्य नहीं हो, और आप इस पूरी तरह से। मैंने कहा कि ये संदेह मैंने महसूस की है, और फिर मैंने उनसे धन्यवाद दिया और उनकी मदद मांगी। लेकिन मैं उनके जवाब से आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मुझसे मत पूछो, जाओ उनसे पूछो। फिर उसने ऊपर की तरफ उंगलियां उठाई, और अब कुछ साल बाद मैं इसी ऑफिस में बैठता हूँ। जब मैं अंदर जाता हूँ और ऊपर देखता हूँ, मुझे उनकी याद आती है, और जो उन्होंने मुझे सिखलाया था कि कैसे दूसरों की मदद करना चाहिए। दूसरों को विश्वास के साथ प्रभु के पास भेजना है। अगर वो आपकी सलाह को सुनेगा तो वो शक्ति और शांति पाएगा। आपके जीवन में प्रभु ने आपको कई बार शक्ति, साहस और निश्चय की अनुभव दी है। उन्हें मालूम है कि उनकी सेवा में आपको इनकी जरूरत है। आपको यह सब तब मिलेगा जब आपने दूसरे प्रिस्टूड के साथ इन शब्दों को बोला होगा। इसलिए हाँ आप प्रभु की सेवा में शामिल हो, देखना कि आप उनकी सेवा पूरे लगन हृदय शक्ति से करो कि आप आखिरी दिन में उनके पास निर्दोष खड़े रहें। अब आपने मेरी तरह महसूस किया होगा जब मैं अपने देश के लिए वर्दी में खड़ा हुआ था। हम लड़ाई में नहीं थे, लेकिन मैं उस मार्ग में जा रहा था जहां मैं जानता था शायद मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। मैंने दूसरों के साथ अपने दाहिने हाथ ऊपर लिए, अपनी देश की हिफाजत पूरी वफादारी से और कि मैं ये जिम्मेदारी अपनी इच्छा और दिमागी अनुसार लेकर अपनी पद पर कार्य करूं और परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वादा मैंने डीकन से लेकर आज तक रखा है। कई साल से मैंने मिशनरी फेयरवेल देखी है। अब बहुत सारे इस बुलावे में सेवा के लिए जा रहे हैं, जो सैक्रमेंट सभा में छोटी सी बयान देकर चले जाते हैं। पहले वो पूरे सैक्रमेंट मीटिंग ले लेते थे, उसमें कुछ चुने हुए गाने रहते थे। मैं अभी भी उस गानों को महसूस करता हूँ। मैं जाऊँगा जहाँ आप चाहते हैं प्रिय प्रभु, और इस शब्दों को वचन अनुसार मैं बोलूँगा जो आप चाहते हैं, और अंत में मैं रहूँगा जो आप चाहते हैं। मेरा हृदय पूर्ण विश्वास से भर जाता है कि पुरोहित प्रस्तुत की सेवा में यह वचन सच्चा है मेरे लिए और तुम्हारे लिए। हमें आनंद मिलेगा जहाँ हम प्रभु की सेवा करेंगे और स्वर पिता के बच्चों को प्रायश्चित के लिए बुलाएंगे कि वे घर वापस उनके साथ रहने के लिए लौट सके। जैसे मैंने पहले महसूस किया था, अब भी करता हूँ कि हमारी सेवा के कारण वह हमारी हृदय को बदल देगा कि हम उनके साथ रहें और हमेशा उनकी सेवा करें। मैं आपको अपना बयान देता हूँ, जब हम अपने आप को उनकी सेवा में लगाते हैं, प्रभु हमें पूरी शक्ति देगा और साहस देगा कि वह हमारे साथ है और उनका दूत हमारी मदद करेगा। मैं बयान देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, यह उनका सच्चा गिरजाघर है और उनका आनंद प्रस्तुत। इस दुनिया में प्रस्तुत की सारी अधिकार प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन में है। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ आमीन।
You've seen a witness tonight.
आज आपने दो काउंसलर की शक्ति को देखी है, पहली प्रेसिडेंट की शक्ति को देखा है। मैं आपके सामने खड़ा होकर ये बताता हूँ, पहली प्रेसिडेंट एक साथ इकट्ठा हुए हैं यीशु मसीह के निर्देशन में। हम आपको याद दिलाते हैं कि टैबरनाकल ब्रॉडकास्ट कल सुबह होगा, और हम प्रीस्टहुड क्वायर जो प्रोहिबिशन स्टैंडर्ड्स है क्या है उनके लिए धन्यवाद देते हैं जो सुंदर संगीत को उन्होंने दिया है, और वक्ताओं को उनके प्रेरित व्याख्याओं के लिए, और मिशनरी क्वायर को भी। मुझे एक अनुभव हुआ जिसमें वो आप उसमें कुछ जानने के लिए इच्छा हो सकती है। मुझे एक फ़ोन कॉल आया है कि मिशनरी घर करना चाहता है, पर वो रुकना नहीं चाहता। वो पहले हुआ है तो इसमें
He cannot learn Spanish.
उसे स्पेनिश मिशन में बुलाव मिला है और वो समझता है कि वो स्पेनिश नहीं सीख पाएगा। मैंने कहा कि कल उसे जापानीज की क्लास में भेजो।
And then have him report to you.
और उसके बाद ने उसे 12 बजे अपने को रिपोर्ट देने को कहा. अगली सुबह उन्होंने 10 बजे फोन लगाया कि जो युवक है मेरे साथ खड़ा है और वो कहता है कि वो मुझे उसको पक्का पता है कि वो स्पेनिश सीख सकता है.
I think I mentioned, but if I didn't, I'll repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir singing Hark All Ye Nations, and the benediction will then be offered by Elder Keith R. Edwards.
Keith R. Edwards फिर प्रार्थना करेंगे.
Now, as I speak to you tonight,
जैसे मैं आपसे आज बोलता हूँ, वास्तव में एक शाही प्रीस्टूड हैं. आप अलग अलग जगह खड़े इकट्ठा हुए हैं पर एकता के साथ में. तुम्हारे दिव्य बुलाओ प्रेरणा वाली है. तुम्हारे कर्तव्यों को सीखने साफ दिखाई देते हैं. तुम्हारी जो आत्माओं की निर्मलता है उससे स्वर्ग तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवारों के करीब आते हैं. दुनिया में कई व्यापार मुसीबत के समय में आए हैं. कई बिजनेस बंद हो गए हैं. कई जॉब चले गए हैं. हम जिनके लिए जिम्मेदार हैं उनके लिए हमें ये देखना है कि वो उन्हें भूखा नहीं जाना है. जब इस गिरजे का प्रीस्टूड काम करता है जैसे इस मीटिंग में आज इकट्ठा है और अगर हम दिल से काम करें तो चमत्कार होते हैं. हम सभी लैटर डे संतों कहते हैं कि वो प्लानिंग से पैसे बचा कर जिए और उधारी नहीं करें. गिरजे के पैसे की जो काम है वो भी उसी प्रकार होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी टाइथिंग बलिदान से आती है और वो पवित्र है. हम अपने घरों को अच्छाई प्रार्थना की जगह और प्यार की जगह बनाना चाहिए ताकि हम उस आशीर्वादों को पा सकें जो स्वर्गीय प्रताप से आते हैं. हमें उनके निर्देशन की जरूरत है. यहाँ इस प्रीस्टहुड की शक्ति के सामने हमें दूसरों को गॉस्पल को बताने की शक्ति है. हमारे पास शक्ति है हम दूसरों को इनएक्टिविटी से उठाएं. हमारे पास दिल है कि हम अपने प्रीस्टहुड बुलावों में विश्वास से सेवा करें और दूसरों को ऊंचे स्तर पर चलने के लिए प्रेरणा दें और पाप से बचने के लिए जो फिर बचे हैं जिससे कई घिरे पड़े हैं. आत्मा की जो मूल्य है वो भगवान की आंखों के सामने बहुत ज्यादा है. हमारा एक जिम्मेदारी है कि हम इस ज्ञान से दूसरों के जीवनों में बदलाव लाएं. इज़ेकियल के शब्दों से हम सब जानते हैं जिसके अनुसार हमें मसीह के कदमों में चलना है. A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you. और जब मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे में डालूंगा और तुम्हें मेरे कदमों में चलने दूंगा और तुम मेरे निर्णय और न्याय करोगे तुम वैसा करोगे और फिर तुम उस जगह में रहोगे जो तुम मैंने पिता को दिया है और तुम मेरे लोग बनोगे और मैं तुम्हारा भगवान बनूंगा. हम इस वादे को कैसे पा सकते हैं? हम इस आशीर्वाद को पाने के लिए किस तरह से लायक हो सकते हैं? मैं आपको तीन चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको आप पे ध्यान देना है. वो डीकनों के लिए, हाई प्रीस्ट के लिए है, वो हम सब के लिए हैं, वो हम सब की पकड़ में है. एक प्यारा स्वर्गीय पिता हमें हमारे रास्ते मदद करेगा. पहला, सीखने की चीज को सीखो. दूसरा, करो जिसे हमें करना है. तीसरा, वो जो तुम्हें होना है उसे हो. हमें इन्हें करना है ताकि हम अच्छे सेवक बन सकें। पहले हमें उसे सीखना जिसे हमें सीखना है। अपॉस्टल पॉल ने हमारे सीखने पर जोर दिया है। उसने फिलिपियंस को कहा, One thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. और फिर हिब्रुओं को उन्होंने कहा, पाप को छोड़ो और धैर्य से काम रखो। देखो, मसीह ने तुम्हारे सामने उदाहरण दिया है। President Stephen L. Richards, जिन्होंने कई साल कोरम ऑफ द 12 अपॉस्टल्स में सेवा करी और फर्स्ट प्रेसिडेंसी में भी, उन्होंने प्रीस्टहुड से एक बार अपनी सोच को बताया। उन्होंने कहा प्रीस्टहुड का मतलब है वो शक्ति जिसे भगवान ने आदमी को दी है। वो परिभाषा से वो ठीक है, पर काम के लक्ष्यों के लिए मैं प्रीस्टहुड को सेवा के रूप में बताना चाहूंगा। मैं उसे सेवा के परफेक्ट प्लान की तरह बताता हूँ। मैं वैसा करता हूँ क्योंकि उसके द्वारा ही दिव्य शक्ति जो आदमियों के पाती है, उसे हम इस एंडाउमेंट की स्फूर्ति को पा सकते हैं। वो सेवा का औजार है और वो आदमी जो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता है और उसे खो देता है, उसके बारे में कहा गया है कि उससे गिना नहीं जाएगा उन लायक व्यक्तियों के बीच में। प्रेसिडेंट हैरल्ड बी ली, जो गिरजे के 11वें प्रेसिडेंट थे और एक बेहतरीन शिक्षक थे, उन्होंने अपने राय को समझने के लिए आसान शब्दों में कहा है, जब भी हम एक प्रीस्टहुड के होल्डर बनते हैं तो भगवान के एजेंट बनते हैं। हमें उनके कॉलिंग को ऐसे करना है कि जैसे हम उनके काम के ऊपर जा रहे हैं। कुछ तुम शर्मीले हो सकते हो या कुछ सोचोगे कि तुम बुलावों को ढंग से नहीं कर पाते हो। ये ध्यान रखो कि ये काम तुम्हारा नहीं है और मेरा नहीं है, ये भगवान का काम है और हम भगवान के काम के लिए आए हैं, इसलिए हमें भगवान की मदद मांगने का हक है। ये ध्यान रखो कि भगवान उस पीठ को मदद करेगा जिस पे बोझा आने वाला है। ये कभी कभार बहुत ज्यादा लग सकता है, पर सबसे ज्यादा जो अच्छी सीख है वो चैपल से बाहर होती है। कुछ साल पहले एरोनिक प्रीस्टहुड के जो सदस्य थे, वो एक एनुअल आउटिंग के लिए उत्साहित थे। बसों में भर के वो हमारे स्टेक से 90 माइल दूर क्लार्कस्टन सेमेटरी में गए, जहां उन्होंने मार्टिन हैरिस की कब्र को देखा, जो बुक ऑफ मोर्मन के 3 में से एक बयान देने वाला था। वहां एक ग्रेनाइट शाफ्ट में, जहां उनकी कब्र थी, उसके बाद मार्टिन हैरिस के बाद उन्होंने बुक ऑफ मोर्मन से अपने बयान को दिया और फिर उस सत्य को बताया। हम उन आदमी जवान आदमी उन्होंने बिल्कुल पूरे दिल से सुना और उस ग्रेनाइट मार्कर को अपने हाथ से छूना जैसे उन्होंने उन शब्दों को सुना। उस लोगन के पार्क में हमने फिर लंच खाया और फिर नवयुवकों उस लोगन टेंपल के लॉन में लेट गए और उन्होंने लंबे स्पायरों को देखा। कई बार सफेद बादल आते थे स्पायरों के पास में। मंदिर का जो लक्ष्य था उसे सिखाया जाएगा, वादों के बारे में बताया गया और वो शब्दों से ज्यादा हुए और उसके बाद में उन जवान दिलों में उसका असर हुआ। दूसरा, हमें उससे सीखना है जिसे हमें दूसरा हमें वो करना है जिसे हमें करना है। प्रीस्टहुड के रेवोल्यूशन के अनुसार जोसेफ स्मिथ ने डॉक्टर इन कवेनेंट ने 107वें सेक्शन में उसे पढ़ाते हैं कि सीखने से हम कर सकते हैं। Wherefore now let every man learn his duty and to act in the office in which he is appointed in all diligence. हर प्रीस्टहुड होल्डर जो इस सेशन में इकट्ठा हुआ है उसे सेवा करने का बुलावा है ताकि वो अपने सभी अच्छे कामों से उस काम को कर सकें जो उसका है। भगवान का कोई भी काम, कोई भी बुलावा कम का नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक अनंत रूप है। प्रेसिडेंट जॉन टेलर ने हमें चेतावनी दी थी, अगर तुम अपनी कॉलिंग को मैग्निफाई नहीं करोगे तो भगवान उस तुम्हारे लिए जिम्मेदार ठहराएगा। अगर आदमी की आत्मा के अनंत जीवन के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? एक आत्मा को बचाने से कितना बड़ा, कितनी बड़ी खुशी आती है, और फिर वो कितना दुख की बात होती होगी जब भगवान का बच्चा बिना चेतावनी के चलते जाता है, जब तक भगवान का एक सेवक आके उसकी मदद नहीं करे, वो कितनी दुख की बात है। पुरानी बात सत्य है, अपना जिम्मेदारी वाला काम करो जो सबसे बढ़िया है, और फिर बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। प्रीस्टहुड होल्डरों को जो सेवा दी गई वो चुपचाप होती है, वो एक मुस्कुराहट द्वारा, एक बार हाथ मिलाने से, एक बयान देने से, जिससे जीवन को उठाया जाता है और मनुष्य के दिल को बदल कर आत्माओं को बचाया जाता है। इसका एक मिशनरी अनुभव में उदाहरण मिलता है जो जूलियस और डोरोथी फ्यूसेक के साथ में है। जब उन्हें 2 साल का मिशक पोलैंड में मिला, ब्रदर फ्यूसेक पोलैंड में पैदा हुए थे, वो भाषा को बोलते थे, वो लोगों को प्यार करते थे। सिस्टर फ्यूसेक इंग्लैंड से थे, वो पोलैंड के बारे में जानते थे और उनके लोगों के बारे में नहीं जानते थे, पर भगवान के भगवान विश्वास कर उन्होंने उसे इस काम को काम पर गए। कभी कभी उनको काम बहुत बड़ा लगा, और उन मिशन में उस समय पोलैंड में मिशन नहीं था, उनका काम था कि वो उस मिशन के लिए तैयारी करें ताकि उसे बनाया जाए, ताकि मिशनरियों को सेवा का मौका मिले, ताकि वो लोगों को सिखाया जाए, फिर कॉन्वर्ट्स बैप्टाइज हों, ब्रांचों को बनाया जाए और चैपलों को भी। क्या एल्डर फ्यूसेक और सिस्टर फ्यूसेक ने अपने बड़े काम से डरा? नहीं, वो जानते थे कि भगवान से आया है, उन्होंने उसकी दिव्य मदद के लिए प्रार्थना करी और अपने आप को पूरी तरह से उनके काम में लगा दिया। वो पोलैंड में रहे 2 साल नहीं, 5 साल, और उसके बाद में उनके सारे लक्ष्य सही हुए, उन्होंने उन्हें पाया। एल्डर लेसर रसल एम सर हांस एम रिंगर और मैंने एल्डर फ्यूसेक के साथ में मिनिस्टर एडम वोप्टाका, जो पोलिश गवर्नमेंट के थे, उनसे मुलाकात करी, और फिर हमने उन्हें बोलते हुए सुना, आपके गिरजा को यहाँ बिल्कुल स्वागत है, आप अपने बिल्डुगों को यहाँ बुला सकते हैं और मिशनरी को भी यहाँ भेज सकते हैं, आपका पोलैंड में स्वागत है। और फिर जूलियस फ्यूसेक की तरफ उन्होंने उंगली दिखाते हुए कहा कि इस आदमी ने आपकी गिरजे की बहुत अच्छी तरह सेवा करी है, आप उनकी मिसाल, उदाहरण और उनके काम के लिए बहुत आभारी होना चाहिए। फ्यूसेक्स की तरह हमें वो करना है जो जिसे भगवान के काम में करना जरूरी है, तब हम जूलियस और डोरोथी फ्यूसेक की तरह साम के वर्स को बताएंगे। माई हेल्प कमेथ फ्रॉम द लॉर्ड विच मेड हेवन एंड अर्थ, ही दैट कीपेथ थी शैल नॉट स्लंबर। Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Tisra, wo ho jise tumhe hona hai. Paul ne apne pyare dost aur kaam karne wale Timothy ko kaha, be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. मैं आप सबको कहता हूं कि आप अपने कामों के बारे में प्रार्थना करो और दिव्य शक्ति और मदद को मांगो ताकि आप उसमें सफलता पा सको जिसके लिए आपको बुलावा मिला है. किसी ने कहा है कि अगर मनुष्य अपनी से ज्यादा बड़ी शक्ति को की ओर देखे तो वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा. उसे हमेशा प्रार्थना करनी है और वो फिर उस प्रकार पाएगा. कभी भी अगर वो दिल से प्रार्थना करेगा तो उसका जवाब हमेशा उसे मिलेगा. ये विश्वास की नींव है. दिव्य मदद उनको आती है जो नम्र दिल से उसे मांगते हैं. बुक ऑफ मॉर्मन से फिर वो एक राय आती है जो उसे पूरी तरह से बताती है. भगवान कहते हैं, Therefore, what manner of men ought you to be? Verily, I say unto you, even as I am. और फिर किस प्रकार का आदमी थे वो भगवान? उन्होंने किस तरह के उदाहरण को बनाए अपनी सेवा के द्वारा? जॉन में चैप्टर 10 के द्वारा हम जानते हैं, मैं I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But he that is a hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth. And the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known of mine. As the Father knoweth me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. भाइयों, मेरी आशा है कि हम उसे सीखें जिसे हमें सीखना है, उसे करें जिसे हमें करना है, और उसे हों जिसे हमें होना है. ऐसा करने से स्वर्ग के आशीर्वाद हमारे ऊपर आएंगे. हम जानेंगे कि हम अकेले नहीं हैं. He who notes the sparrow's fall will in his own way acknowledge. वो जो फिर स्वर्ग में रहते हैं वो हमें मदद करेंगे. कई साल पहले मुझे एक पुराने दोस्त से खत मिला. उसने उस खत में अपने बयान को बताया. मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वो प्रीस्टहुड की शक्ति को के बारे में बताती हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या सीखना चाहिए और उसे कैसे कोशिश करनी चाहिए. मेरा वो जो दोस्त है थेरोन डब्ल्यू बोरब, जो 3 साल पहले 90 साल की उम्र में चल बसे, उन्होंने कहा, 8 साल की उम्र में जब मैं बैप्टाइज हुआ था और उन्हें पवित्र आत्मा को पाया, मुझे अच्छा होने की बहुत इच्छा हुई और पवित्र आत्मा की मदद से मैंने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करी. मुझे बताया गया कि पवित्र आत्मा हमेशा अच्छी संगत में ही आती है और जब पाप हमारे जीवन में आता है तो वो चली जाती है. इसलिए मैंने हमेशा उस तरह जीवन जीने की कोशिश करी ताकि मैं उस उपहार को कभी नहीं खोऊं. उन्होंने कहा कि एक समय उनके जीवन को बचाया. वर्ल्ड वॉर टू में जब वो B-24 बॉम्बर में इंजीनियर गनर था साउथ पैसिफिक में, एक दिन एक अनाउंसमेंट हुए कि एक बॉम्बिंग फ्लाइट होने वाली थी जिसमें एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर बॉम्ब गिराना था. आत्मा ने कहा कि मुझे उस फ्लाइट के ऊपर असाइनमेंट मिलेगा और फिर मैं वापस नहीं आ पाऊंगा. उस समय मैं LDS ग्रुप का प्रेसिडेंट था. वो लड़ाई बोर्नियो के ऊपर बहुत ज्यादा लंबी थी और हमारे प्लेन को दूसरे प्लेनों ने अटैक किया और उसमें आग लग गई. और जैसे ही हम नीचे गए, मैं अपनी लाइफ राफ्ट को फुलाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही मैं ऊपर नीचे पानी में जा रहा था मैंने डूबने लगा. मैंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मुझे बचाओ. फिर मैंने वापस लाइफ राफ्ट को फुलाने की कोशिश करी और फिर मैं उसमें सफल हुआ. उसमें हवा थी और मैं फिर उससे बहते गया. 3 दिनों तक हम भगवान की मदद से बच पाए क्योंकि हम दुश्मन के इलाके में थे. हम कभी भी समझ नहीं पाए कि उन्होंने हमारी पीली राफ्टों को नीले पानी में क्यों नहीं देखा. उसे देखना बहुत आसान काम थी. फिर एक तूफान आया और उसने हमारी राफ्टों को लगभग तोड़ दिया. 3 दिन चले गए पर हमें कुछ खाना और पानी नहीं मिला. मैंने प्रार्थना करी और दूसरे उस शाम हमने अपनी सबमरीन को देखा जो हमारी मदद के लिए आई थी, पर वो हमारे सामने चली गई. और फिर अगली सुबह भी उसने वैसा ही किया. तो फिर मैंने उस समय मुझे पवित्र आत्मन की बात ने यह कहा, तुम्हारे पास में प्रीस्टूर है. सब मैंने इनको कहो कि वो आके तुम्हें उठाए. फिर मैंने यीशु मसीह के नाम और प्रीस्टूर की शक्ति से कहा कि सब मैंने वापस आओ और हमें उठाओ. कुछ मिनटों बाद सब मैंने उनके पास में आए थे. वो सबमरीन उनके पास में आए और उन्होंने उन्हें बचा लिया. मैं बयान देता हूं कि हम जिस काम में हैं वो सच है. भगवान उसके मुखिया हैं. अगर हम उसे पालन करें वो सबसे अच्छी बात होगी. ये मेरी सच्चे दिल की प्रार्थना है जिसे मैं यीशु मसीह के नाम में करता हूं. आमीन.
Voice through every land that all may rejoice.
Our Holy Father,
हमारे पवित्र पिता,
we thank thee,
हम धन्यवाद देते हैं कि हम चुने गए हैं कि आपके सेवा कर सके, कि आपकी जो ये सुसमाचार है सभी के पास ले जाएं. हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों को ये दिया है कि हम आपके कार्य कर सकें. हम आपके सामने अपना कमजोरी देते हैं और जो कमजोरियों हम लोगों को आपके सामने लाते हैं, शक्ति दे ताकि हम हमारे जो बुलावा है उस पर हम सेवा कर सकें. हम लोगों को आशीष दे ताकि हम सीख सकें जो हमें सीखना चाहिए और जो कार्य हमको करना चाहिए और हम वो बने जो हमको बनना चाहिए. हमें आशीष दे ताकि हम स्त्रियों की और अच्छी तरह से प्यार कर सकें और उनको ऑनर कर सकें और जो प्रिस्टुड हमें है उसको हम ऑनर कर सकें ताकि हम प्रिस्टुड और जो सैक्रमेंट है उनको भी हम अच्छी तरह से दे सकें. हमें आशीष दे ताकि हम एक रॉयल आर्मी की तरह रहे ताकि हम सभी की सामना कर सके जो है. हम अभी से ऊपर उठ जा सके और कमज़ोरों को ताकत दें और वो कार्य करें. यह सब हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो जो आपने हमको प्रिस्ट दिया है. यीशु मसीह के नाम से, आमीन.